भूकंप, बुशफायर्स, बाढ़ और ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले कुछ कम जानकारी में आया थंडर स्टॉर्म अस्थमा। 2016 में ये थे सब प्राकृतिक हादसे जो सुर्खियों में छाए रहे। तो आइए पलट कर देखते हैं इस पूरे वर्ष को। ऐसा लगता है कि वर्ष 2016 जैसे भूकंप का वर्ष रहा। वैसे कई और पहले वर्ष रहे जिनमें धन जन हानि शायद इससे भी भयंकर रही, लेकिन 2016 में भूकंप जैसे सारे साल सुर्खियों पर छाया रहा। फरवरी की शुरुआत में ताइवान में 6.4 तीव्रता वाले भूकंप ने वहां देश के दक्षिण को बड़ी मात्रा में तहस नहस किया। 117 लोग इस भूकंप की बलि चढ़ गए। जब ताइनेन में 17 मंजिला इमारत भूकंप से गिर गई, तब वहां रह रहे लगभग सभी लोग मारे गए। फिर अगस्त में मध्य इटली में आए 6.2 तीव्रता वाले भूकंप से कोई 300 लोगों की मृत्यु हो गई और इस भूकंप के हादसे में बच गए 65 वर्षीय जोन कार्लो।
I was in a house on top of the hill that collapsed. I survived, thank God, and I hope others are safe as well. I've been out here for 2.5 hours, wearing just my underwear. I don't know. We are waiting to see what will happen. We don't know anything. It's terrible. I'm 65 years old, and I have never experienced anything like this. Small tremors, yes, but nothing this big. It's a catastrophe.
अक्टूबर में मध्य इटली की ऐतिहासिक इमारतें नष्ट हो गईं जब वहां 6.6 तीव्रता वाला एक और भूकंप आया। 1980 के बाद से ये सबसे अधिक भयंकर भूकंप था। और फिर नवंबर में न्यूजीलैंड ने झेला 7.8 तीव्रता का भूकंप और इसके बाद कई आफ्टरशॉक्स जिनमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। स्थिति गंभीर थी और सुनामी की चेतावनी जारी की गई। क्राइस्टचर्च के पूर्वी उत्तर क्षेत्र में 90 किलोमीटर दूरी पर आए इस भूकंप से लोगों को घरों से निकलकर ऊंचे स्थानों पर जाना पड़ा क्योंकि लहरों की ऊंचाई 2 मीटर से ऊंची थी। एक निवासी माइकल मॉर्गन ने इस अत्यंत भयभीत करने वाली स्थिति को 45 सेकंड्स तक झेला, उसका अनुभव किया।
It was horrible. It started off with just a little bit of a roll, and then it must have lasted about 40-45 seconds. Yeah, and then there was a jolt, and I was trying to get up, but the ground, because the ground was moving like that, you can't do anything. Mm. And I was trying to reach for the lamp to turn it on, and couldn't even move.
और नवंबर में ही बाद में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया जापान के होनशु द्वीप पर, जिसमें एक बार फिर सुनामी नहरों को जन्म दिया और जापान के पब्लिक ब्रॉडकास्टर NHK ने चेतावनी जारी की।
At 6:49 a.m., a 60-centimeter tsunami was observed in Onahama Port in Iwaki City, Fukushima Prefecture, and tsunami waves could have reached the shorelines.
और फिर एक और भूकंप ने जैसे ठीक उसी भूकंप की यादें ताजा कर दी जो साल की शुरुआत में आया। इंडोनेशिया के आचे में आया 7 दिसंबर को 6.5 तीव्रता का भूकंप और 103 लोगों की मृत्यु हो गई। 1000 से भी अधिक लोग घायल हुए इस भयंकर भूकंप में। और एक तरह से यादें ताजा हो गईं इसी जगह 2004 में बॉक्सिंग डे पर आए भूकंप की और सुनामी की। भूकंप से अलग 2016 में आया सितंबर में हरिकेन मैथ्यू हेती में। 250 किलोमीटर की रफ्तार की तेज हवाएं और 840 लोग मारे गए। इस द्वीप देश में आए प्रचंड तूफानों में ये तीसरा इतना तीव्र प्रचंड तूफान था। राजधानी के पश्चिम में शहर पोर्ट एयू प्रिंस से एक व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहायता की गुहार की।
Oh, the situation in Germany is very bad. As you could see, everything gone. The town, all the town destroyed. So we need the international support because every families are very poor. They have no water, they have no food. They need medicine, treatment. They need good water.
इस वर्ष विध्वंसकारी आग भी लगी। खासतौर पर इसराइल नवंबर माह में अर्बन फायर्स और बुश फायर से जूझता रहा। हाइफा शहर में 75,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इजराइल पुलिस प्रवक्ता मिकी रोजनफेल्ड ने बताया कि कई आगों को जानबूझकर लगाया गया।
At the moment we're investigating how the fires began. We strongly believe that the fires could have been started by individuals who fled the scenes. There are a number of reports that we've received.
और नवंबर में ही अमेरिका में स्मोकी माउंटेन्स में लगी बुश फायर में 14 लोगों की मृत्यु हुई। 2,000 से भी अधिक घर, बिजनेसेस आदि पूरी तरह से खत्म हो गए। और वहां जानी मानी कंट्री म्यूजिक की प्रसिद्ध डॉली पार्टन ने पीड़ितों की सहायता के लिए एक फंड की स्थापना की।
We want to provide a hand up to all those families that have lost everything in the fires. And to recover, we want to make sure that the Dollywood Foundation provides $1,000 a month to all those families that have lost their homes in the fires until they get back up on their feet.
दिसंबर में नैशविल से एक टेलीथॉन करके उन्होंने कई मिलियन डॉलर जमा किए। और बाढ़ की बात करें तो अगस्त में अमेरिका के लुसियाना में आई बाढ़ से 40,000 घर बर्बाद हो गए, 13 लोग मारे गए और पीड़ितों में हैं जो ली मिसलर, जिनके परिवार पर इसका असर पड़ा।
I live in a higher elevation than they do, and I mean that's 36 members, but that's, you know, that's the entire family of 13 homes. We only have 7 homes in the family that were not affected, so these family members are now staying with other members who, you know, who didn't lose their homes. I mean, it's unbelievable what they've been through. We just never imagined that this would happen in the first place. It's hard to know where to start.
और नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में आया एक थंडर स्टॉर्म, जिसने इस स्टॉर्म से जन्म दिया थंडर स्टॉर्म अस्थमा को। 8,000 से भी अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और 8 लोगों की मृत्यु हो गई। थंडर स्टॉर्म अस्थमा होता है जब तूफान और बारिश की वजह से पॉलेंस कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं और वो सांस के साथ आसानी से अंदर फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। इस अस्थमा की स्थिति इतनी गंभीर थी, इतनी अधिक थी कि विक्टोरिया में इमरजेंसी सर्विसेज को 5 घंटों के अंदर 1900 इमरजेंसी कॉल से डील करना पड़ा और पैरामेडिक्स शीघ्र ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए संघर्ष करते रहे। इसे देखते हुए विक्टोरिया के प्रीमियर डैनियल एंड्रयूज ने राज्य की एम्बुलेंस सर्विसेज को और अधिक सक्षम और अपग्रेड करने के लिए 500 मिलियन डॉलर की सहायता धनराशि घोषित की।
We've seen just this week a timely reminder that we have to keep investing in our health system, in our ambulance system, making sure that our paramedics, our nurses, our doctors, everybody in the team has got the resources that they need.
यानी कुल मिलाकर वर्ष 2016 प्राकृतिक आपदाओं, हादसों का शिकार बना रहा।